देवियों सज्जनों, आज के विषय आरंभ करने से पहले आप सबको अगले कल आने वाले नए साल की बहुत बहुत अभिनंदन। देखते देखते 2017 भी बीत गया और प्रैक्टिकली तो ना कोई रियलिटी में कोई ना साल बीतता है ना कोई साल आता है। हम पुराने एक्सपीरियंस के साथ नए चीजों की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। साल महीना दिन ये तो हमारे अपने डिविजन्स हैं, अपनी सहूलियत के लिए, अपनी आसानी के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने बनाया है। पर जो भी डिविजन्स हम बनाते हैं, बनाया है, और जब वो कोई पीरियड खत्म होता है तो वो टाइम होता है कि हमें अपने आप को सोचने के लिए कि हमने क्या खोया, क्या पाया, कुछ अच्छा किया, बुरा किया, अगर बुरा किया तो उसको रेक्टिफाई करें, अच्छा किया तो उसको ज्यादा करें, कुछ नहीं किया तो कुछ करें। बुरा करने से बुरा होता है कुछ ना करना, देवियों सज्जनों ये ध्यान रखिए, बुरा करने से भी बुरा होता है कुछ ना करना, निकम्मा होने से अच्छा है कुछ खराब भी कर लेना। अपने आप को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है लाइफ में। कुछ करें और अच्छा करें तो, पर साल तो आते रहते हैं, महीने आते रहते हैं, पर ठीक है, ये हमें एक मौका देता है हमें पीछे सोचने के लिए, आगे की अपने आप ठीक करने के लिए। आशा है 2018 आपके लिए सबके लिए शुभ होगा। अभी 2017 पूरा नहीं हुआ है, अभी भी 12-14 घंटे बाकी हैं। इसमें बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, बहुत कुछ बुरा हो सकता है, बहुत कुछ एवरेज हो सकता है। ये 18 घंटे भी कम टाइम नहीं होते, ये 12-13 घंटे भी, एक घंटे भी बहुत बड़ी बात होती है। तो सबके लिए अच्छा हो इसी मंगल भावना के साथ सोचना है। कल आर्य समाज में न्यू ईयर का हवन जो हर साल होता है, नए साल का हवन है, 11 बजे से 1 बजे तक आप सब लोग आमंत्रित हैं। नए साल को ईश्वर की भक्ति के साथ शुरू करें, आप सब आए हवन में पार्टिसिपेट करें और अपने जीवन को खुशी से भरें। तो आते हैं आज के टॉपिक पर, गीता के 17 चैप्टर ऑलमोस्ट वी आर कंक्लूडिंग स्टेज पर हैं, जिसका मूल विषय है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो बाय नेचर अलग अलग टाइप के होते हैं और उन सबको क्लासिफाई तीन तरह से किया। उनकी जो इनहेरेंट नेचर है, जिस तरह के उनकी एटीट्यूड है किसी भी काम को करने के लिए, बहुत अच्छे क्वालिटी के जिसको हम सात्विक कहते हैं, मीडियम रेंज के जो राजसिक हैं आमतौर पर जो कॉमन इंसान है, और जो खराब कैटेगरी के हैं जिसको हम तामसिक कहते हैं। कोई भी काम हम करते हैं ईश्वर की भक्ति से लेकर के, बुरे कामों की बात नहीं कर रहे, अच्छे कामों की, आप दूसरों की हेल्प करते हैं, सत्य बोलते हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं, प्रोफेशन में हैं, कुछ भी करते हैं, उन सब में वो झलक दिखता है, वो ग्लिम्प्स दिखता है जैसी हमारी पर्सनालिटी हो, और उसको तीन तरह से बांटा। कंक्लूडिंग इस चैप्टर के कंक्लूडिंग 2-4 श्लोक में हम कुछ और सुनेंगे, मेरे साथ मिलकर बोलिए। ओम तत्सदिति निर्देशो, तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः, ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत, ये तीन शब्द है, तीन वर्ड है जो परमात्मा को, ब्राह्मण को, सर्वव्यापक ईश्वर को इंडिकेट करता है, उसको बताता है ये उसका नाम है और उसके एट्रीब्यूट्स है। और इसीलिए हमारे संस्कृति में, हमारे परंपरा में, कोई भी काम, अच्छा काम शुरू करने से पहले ओम तत्सत बोलने की परंपरा रही है, जिसको गीता यहां कोट करता है। इसीलिए जो ब्राह्मण है, ब्रह्मज्ञानी है, एनलाइटेंड लोग हैं, और या वेदा हैं जो ज्ञान के भंडार हैं, यज्ञ जो हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग का पहला सोपान है, पहली सीढ़ी है, ये सब कुछ हम ओमकार के उच्चारण के साथ करते हैं। ओम क्या है, यहां सत्संग में बहुत बार चर्चा की है, पर थोड़ी सी नए लोग भी बीच बीच में आते हैं। ओम एक सिलेबल है जो तीन लेटर से मिला हुआ बना हुआ है, अ प्लस उ प्लस म। ओमकार ईश्वर का, प्रभु का, परमात्मा का नाम है। वैसे तो प्रभु के लाखों करोड़ों नाम हो सकते हैं, हर लैंग्वेज में हो सकता है, हमारे अपने लैंग्वेज में भी करोड़ों लाखों नाम है। आप किसी भी नाम से उसको बोलो, वो भगवान को इंडिकेट करता है, और लोग अलग अलग नाम से भी उसको पूछते हैं, कोई विष्णु, कोई भगवान, कोई कृष्ण, कोई गणेश वगैरह वगैरह, कोई फेमिनिन जेंडर से, कोई मैस्कुलिन जेंडर से, कोई न्यूट्रल जेंडर से, किसी भी जेंडर से, किसी भी नाम से हम पूछते हैं। पर वो हम उस पर्टिकुलर उस बीइंग को पूछते हैं या मानते हैं, पर उसका अपना एक नाम है जो हमारे ऋषियों ने, ऋषि का मतलब होता है एनलाइटेंड लोग, रियलाइज्ड पर्सन, जिन्होंने सचमुच उस सत्य को जाना, समझा, अनुभव में लाया, उन्होंने उसके जो नाम दिया ओम, जो बहुत ही ब्यूटीफुली मीनिंगफुल नाम है। हम सबका अपना अपना नाम कुछ ना कुछ होता है ऑफिशियली सर्टिफिकेट्स में। वैसे यहां तो जिसका जो नाम होता है सर्टिफिकेट में वही बुलाया जाता है, पर जो हम सब भारत से हैं, हमें सबको पता है, ज्यादातर भारत में भी बहुत सारे स्टेट्स में नीक नाम ज्यादा पॉपुलर होता है इंस्टीट्यूट ऑफ द सर्टिफिकेट, जो नाम होता है। और सिर्फ इतना नहीं होता है, आपका नाम कुछ भी हो, आपके आसपास रहने वाले 90% लोग आपको नाम से नहीं बुलाते हैं। आपके बच्चे आपको मां बोलते हैं, आपके पति आपको और कुछ बोलते होंगे, आपकी पत्नी आपको और कुछ बोलते होंगे, आपके भाई कुछ बोलते होंगे, आपको बहन कुछ बुला के बुला बोलती होगी, आप जिस प्रोफेशन में हैं, आपके जो सबोर्डिनेट है आपको कुछ और बोलते होंगे, आपके जो ऊपर हैं वो किसी नाम से बुलाते होंगे। तो आप व्यक्ति एक हैं, पर अलग अलग आपकी सोसाइटी में जो आपकी स्टेटस है, जो स्टेट है, जिस तरह के काम आप करते हैं, जिस तरह का रिलेशनशिप है, उसके हिसाब से लोग आपको अलग अलग तरीके से जानते हैं। बहुत लोगों के लिए आप बहुत बुरे हैं, शैतान हैं, पर बहुत लोगों के लिए आप बड़े देवता और भगवान भी माने जाते होंगे। हो सकता है जो लोग आपको पसंद नहीं करते, आपके शत्रु हैं, वो आपको बहुत, आपके नाम लेने से पहले तीन चार सुंदर सुंदर गाली लगाते होंगे, पर ऐसे भी लोग हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं, जो आपके प्रति बहुत ग्रेटफुल हैं, आपके प्रति बहुत सम्मान भाव रखते हैं, वो आपके नाम लेने से पहले तीन बार मन में बड़े अच्छे भाव सोचते होंगे। ये एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम हो सकते हैं, पर उसका हमने मां बाप के द्वारा दिया गया एक प्रॉपर नाम होता है, जिसको जहां उसकी ऑफिशियली यूज करना होता है वो यूज करते हैं। पर उस नाम के साथ हमारा, हमारी पर्सनालिटी का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, वो रैंडमली कहीं तुक्का लग जाए अलग बात है। किसी का नाम धनेश्वर हो, धनेश्वर धन का ईश्वर है, पर जरूरी नहीं कि वो धनी हो, हो सकता है भीख मांगता हो, गरीब हो, मजदूरी करता हो। किसी का नाम कमल लोचन हो, आंखें कमल जैसा, पता चला उसकी आंखें ही नहीं है। तो बहुत सारे पुराने जमाने के लोग हैं, फक्कड़ राम है, फक्कड़ है पर बहुत पैसा वाला है, नाम फक्कड़ है तो पैसा बहुत है। तो नाम के साथ हमारी पर्सनालिटी का रिलेशनशिप रैंडमली कभी एक्सीडेंटली मैच कर जाए अलग बात है, जनरली उसका कोई लेन देन नहीं होता, और मां बाप इस दृष्टि से देते ही नहीं कि मेरा बच्चा ऐसा है तो इसीलिए ऐसा नाम देंगे। पर जो प्रभु के लिए जो नाम ये दिया गया है, जो ओम जो नाम दिया गया है, वो बहुत ही मीनिंगफुल है, और ईश्वर की जो ओवरऑल कैरेक्टर है जो उसको डिफाइन करता है, उसको उसको एक्सप्लेन करता है। ये तीन अक्षरों का मिला हुआ ओमकार का नाम, तीन अक्षर हर अक्षर अपने कोई ना कोई अर्थ के साथ देते हैं। अकार जिसका अर्थ होता है हमारे संस्कृत अल्फाबेट्स में फर्स्ट लेटर है, वावेल है, और बड़ी खूबसूरत की खूबसूरती की बात है कि अ लेटर जो है वो सारे संस्कृत अल्फाबेट में वो कॉन्सोनेंट हो या वावेल्स हो सबके अंदर वो मिलता है क ख ग घ में। इसी तरह परमात्मा उस अ लेटर के तरह भी है, वो अ अक्षर उस परमात्मा के उस विशेष गुण को बताता है कि जो सृष्टि के आरंभ में भी पहला है पर सृष्टि के हर कण कण में वो है अ अक्षर के तरह, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता। मांडुक्य उपनिषद जो ओमकार की व्याख्या करता है उसमें बड़ा सुंदर बताता है, अकार द स्टेट ऑफ वेकिंग। व्यक्ति के जीवन में चार तरह के स्टेजेस होते हैं। एक स्टेट होता है जब आप जागे हुए होते हैं, जैसे अभी आप जगे हुए हो, सुनते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, कुछ करते रहते हो, कुछ नहीं करते तो क्या हो रहा है वो आपको पता चलता है, दैट इज योर वेकिंग स्टेट। इसी तरह ये जो संसार है, ये जो संसार आप देखते हैं बड़ा विविधता से भरा हुआ है, पहाड़ पर्वत, कहीं कुछ नष्ट हो रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, समथिंग इज डाइंग, समथिंग इज गेटिंग बर्न, प्लैनेट्स आर गोइंग टू डिस्ट्रॉयड, न्यू प्लैनेट्स आर कमिंग, कुछ ना कुछ होता रहता है पूरे यूनिवर्स में, बड़े एक्टिव यूनिवर्स है। ये उसकी जागृत अवस्था है। और ये जो संसार की जो जागृत अवस्था है, जो कुछ चलता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ घटता रहता है, इसका एक टर्मिनोलॉजी बताया कि विराट है, विविध प्रकार से अलग अलग तरीके से जो जो खिलता रहता है, और उसके अंदर समाया हुआ ईश्वर का नाम है वैश्वानर। ईश्वर का एक अलग एडजेक्टिव है जो संसार के हर चीज के अंदर समाया हुआ है, और वो क्रिएटर भी है। इसी तरह वो अक्षर संस्कृत के जो अल्फाबेट्स हैं वो वावेल्स में से बीच में आता है, मिडिल में आता है। इसी तरह परमात्मा ये संसार के जो बिगिनिंग और एंड, इसके बीच में जो स्टेज है जिसको हम एग्जिस्टेंस कहते हैं, उस एग्जिस्टेंस को होल्ड करने वाला, उसको प्रिजर्व करने वाला, उसका ख्याल रखने वाला, उसका टेक केयर करने वाला, आप कह सकते हैं केयर टेकर, प्रिजर्वर हम सब हैं। तो हम सबका कोई पालन करता है, हम सब खुद के पालन नहीं कर सकते। अगर हवा ना हो, पानी ना हो, अनाज ना हो, पेड़ पौधे उस हालत में ना हो, सूरज धूप ना दे, बारिश समय पर ना हो, नाले ना हो, नदी ना हो, तो हम नहीं जी सकते। तो हमें पैदा करने से पहले ईश्वर ने ये सब जुगाड़ करके रखा, फिर हमें पैदा किया। जिसको भी संसार में लाया उससे पहले उसको जो चाहिए जिंदा रहने के लिए वो सब पहले उन्होंने रेडी किया, फिर उसको उसको लाया। बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ बाप जब बच्चे को जन्म देने के लिए सोचते पहले प्रिपेयर करते हैं कि भाई हमारे पास कुछ पैसा हो जाए, कोई घर हो जाए, उसके लिए कहाँ वो रहेगा, उसके लिए रूम तैयार करते हैं, उसके लिए खिलौना लाते हैं, फिर बच्चे को धरती पर लाते हैं। इसी तरह प्रभु भी संसार में किसी भी चीज को लाने से पहले पूरी तैयारी करके फिर लाता है। वो अलग बात है कि हम उसका इतना एक्सप्लोइट करते हैं, मिसयूज करते हैं, हम करते हैं या हमारे एंसेस्टर ने किया, वह हम करते हैं, हमारे अगले पीढ़ी के लिए कुछ बचाते नहीं है, वो हमारा लालच है, वो अलग बात है। पर ईश्वर की तरफ से सबके लिए प्रॉपर व्यवस्था की जाती है, द क्रिएटर सस्टेनर। जैसे मनुष्य के जीवन में एक स्टेज होता है जब वो जागा हुआ तो नहीं होता है, उसके सेंसेस एक्टिव नहीं होते हैं, जब सेंसेस एक्टिव होते हैं तब आप जगे हुए होते हैं, वो पर उसका माइंड एक्टिव है। जब आप सोए हुए होते हैं या बहुत थके मांदे बैठे हुए होते हैं, आंखें बंद है, पर इसका अर्थ नहीं कि आप एक्टिव नहीं है, आप फिजिकली एक्टिव नहीं है, आपकी सेंसेस कोई एक्ट नहीं करते हैं, पर आपका मन अभी भी एक्टिव है। दैट इज द स्टेज ऑफ स्टेट ऑफ ड्रीम, स्वप्न की दुनिया उसी को कहते हैं। क्योंकि मन अब सेंसेस के द्वारा कोई नॉलेज नहीं एक्वायर करता, तो वो जितना नॉलेज उसके अंदर है ऑलरेडी स्टोर है, उसको वो एक दूसरे से मिला जुला के नए नए ज्ञान को अपने आप लाना लाता है, जिसको आप इमेजिनेशन कहते हो, जिसको आप ड्रीम कहते हो, वो एक दूसरी स्टेट है। इसी तरह जब ये यूनिवर्स पैदा नहीं हुआ है और प्रलय की स्थिति से गुजर चुका है, उसका जो डिसोल्यूशन पीरियड खत्म हो चुका है, अभी क्रिएशन के पीरियड में आ रहा है, इन दैट मोमेंट उस बीच की जो हालत है जहां वो मैनिफेस्टेड फॉर्म में नहीं है पर क्रिएशन की प्रोसेस में आ चुका है, आप ये नहीं कह सकते कि ये है पर उसकी एग्जिस्टेंस आ चुका है। जैसे अंडे के अंदर रहने वाला बच्चा या मां के गर्भ के शुरू के एक महीने एक हफ्ते के रहने वाले बच्चा, जैसे बीज के अंदर किसी सीड के अंदर जो प्लांट्स की जो एग्जिस्टेंस है वो उस प्रोसेस में आ चुके हैं, पर अभी आप दावा नहीं कर सकते हो कि ये पेड़ है, ये बच्चा है या चिड़िया है। उस स्टेज को कहते हैं स्टेज ऑफ ड्रीम यूनिवर्स का। उस स्थिति में भी परमात्मा उसका टेक केयर करता है, इसलिए उसका नाम तैजस है, उसका नाम हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ इसीलिए क्योंकि सारा संसार जब क्रिएशन के मोड में होता है, यूनिवर्स जब शुरू हुआ तब सब, जैसे आप जानते हैं कि वो बिग बैंग थ्योरी, सबसे पहले कोई गोला एनर्जी का जो पिंड है उसमें विस्फोट होता है और उसमें से अलग अलग तरह के नए अलग अलग तरह के गैलेक्सीज बनते हैं, फिर धीरे धीरे ठंडा होता है, प्लैनेट्स बनते हैं। वो जो स्टेज ऑफ बिगिनिंग है दैट इज कॉल्ड हिरण्यगर्भ। मकार जो ओम के जो तीसरा अक्षर है, मकार सारे कंसोनेंट का आखिर लेटर है, सबसे अंतिम लेटर माना जाता है, जैसे वहां पर खत्म हो जाता है इसी तरह ये संसार का अंत करने वाला भी, नष्ट करने वाला भी परमात्मा होता है। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट साइकिल। हमारे यहां नष्ट होने को बुरे नजर से नहीं देखा जाता है धार्मिक सिस्टम में, क्योंकि नष्ट होना ही किसी नए चीज को पैदा करने का आरंभ माना जाता है। इसलिए मरना कोई एंड ऑफ लाइफ नहीं माना जाता है, मरना फिर नए जीवन के लिए शुरुआत का आगाज होता है। इसी तरह कोई चीज नष्ट होता है, आप कोई चीज छोड़ते हैं, नष्ट होते हैं, उसकी जगह नए चीज लाते हैं। तो जैसे जन्म होना एक इंसिडेंट है, तो मरना भी एक इंसिडेंट है और साइकिल है, क्योंकि हर चीज को अपने उस साइकिल में जाना होता है। हमारी अवस्था, हमारे लाइफ में जैसे एक स्टेट ऑफ डीप स्लीप होता है जहां आपके सेंसेस काम नहीं करते, आपका माइंड भी काम नहीं करता, पता कैसे? तब आप कहते हैं जो सुबह उठते हैं, सो गए दिन भर बड़े थके मांदे आए 5-6-7 बजे, बहुत बिजी शेड्यूल था, हेक्टिक था, एग्जॉस्टेड हो चुके थे, जो भी खाना खाया थोड़ा खा लिया, लेट गए, सुबह 7-8 बजे नींद खोला, पता ही नहीं चला, अच्छा 8 बज चुका है, घड़ी देखा, हमने कहा मजा आया, पता ही नहीं चला कब सोया कब उठा। जब पता ही नहीं चले कि आप सोए और कब उठे, दैट इज कॉल्ड डीप स्लीप, सुषुप्ति। सुषुप्ति कैसा होता है? जब आप खोते हैं पर आपको यह पता ही नहीं होता है कि आप होते हैं। जब आप गाढ़ नींद में होते हैं तो आप होते हैं, पर आपको पता नहीं होता है कि आप होते हैं। आपको यह भी नहीं पता होता है कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा होता है, वहां ढोल बजा, कहीं नए साल की सेलिब्रेशन हुआ, पटाखे फूटे, आपको कुछ नहीं पता। घर में चोर घुसा, कुछ नहीं पता आपको, आप सोए हुए हैं। आप होते हैं पर आपको पता ही नहीं चलता, दैट इज कॉल्ड डीप सुषुप्ति। इसी तरह संसार की सुषुप्ति होती है। जब ये संसार नष्ट हो जाता है, तो आपको नष्ट होने का अर्थ यहां नहीं है कि कोई चीज अपनी एग्जिस्टेंस से दूर चला गया, उसका एग्जिस्टेंस बना रहता है, इट्स नॉट एब्सोल्युटली एब्सेंट, पर अब वो दिखता नहीं है, वो होता है पर उसका ज्ञान नहीं हो पाता है क्योंकि वो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में चला जाता है। फिर जब सृष्टि का समय आएगा तो वो दोबारा सृष्टि होता है। वो जो स्टेज है संसार का, दैट इज कॉल्ड सुषुप्ति। सुषुप्ति में भी परमात्मा अपना काम करता है ईश्वर के रूप में। हमारे जीवन में और एक स्टेज होता है, एक तो होता है जगा हुआ स्टेज, दूसरी जब आपकी सेंसेस बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं पर माइंड एक्टिव है, उस समय उसको ड्रीम स्टेट। तीसरी स्टेट है जब आपके माइंड और सेंसेस सब कुछ इनएक्टिव हो जाते हैं, आप होते हैं पर आपको पता ही नहीं चलता है कि आप हैं, सुषुप्ति गाढ़ नींद की स्थिति। एक चौथी स्थिति हमारी होती है जो इनविजिबल होता है, इनडिस्क्राइबेबल होता है, अनथिंकेबल होता है। तो क्या, जब व्यक्ति शरीर से अलग हो जाता है, आत्मा, दोबारा कोई शरीर नहीं मिलता है, जिसे हम सीधी सीधी भाषा में मोक्ष कहते हैं, फ्रीडम, रिलीज, फ्रीडम फ्रॉम व्हाट, फ्रीडम फ्रॉम बॉडी माइंड एनीथिंग, मुक्तावस्था, परमानंद को प्राप्त करता है। वो स्थिति आप बता नहीं सकते, यू कैन नॉट डिस्क्राइब इट, सेंसेस इसको जान नहीं सकते, इसको जाना नहीं जा सकता क्योंकि आपकी सेंसेस ही जानने का इंस्ट्रूमेंट है और सेंसेस की अपनी लिमिटेशन है। क्योंकि आप इसको जान नहीं सकते फिजिकल बॉडी से तो आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिस्क्राइब इट, यू कैन फील इट बट यू कैन नॉट डिस्क्राइब इट। अदृश्य, अव्यक्त, अवर्ण्य वो स्टेज है जब आपकी रियल स्वरूप को आप पा जाते हैं, आत्मा। इसी तरह जब ये संसार अपने पूरी तरह डिसोल्यूटेड स्टेट में आ जाए, कहीं कुछ भी नहीं, ना ये आकाश है, ना धरती है, ना हाग है, ना पानी है, ना गैलेक्सी है, कुछ भी नहीं, तब वो ईश्वर होता है। पर उसको जानने वाला कोई नहीं होता है, उसको समझने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि संसार अपने मैनिफेस्टेड एग्जिस्टेंस से दूर चला जाता है, दैट इज इट फोर्थ स्टेज। तो आ वो मकार मिलकर जो ओम बनता है, अउमा, ये तीन अक्षर है, ये तीनों अक्षर मिलने पर जो चौथा अक्षर बनता है, विच इज नॉट पार्ट ऑफ द अल्फाबेट्स, जो संस्कृत वर्णमाला में कहीं ओम नामक कोई अक्षर नहीं है, उसको बता नहीं सकते पर वो एग्जिस्ट करता है। इसी तरह ये जो चार स्थिति वाले ओम अक्षर है, वो परमात्मा के खुद के उसकी जो कैरेक्टर है, और यूनिवर्स या हमारे साथ जो उसका रिलेशनशिप है, क्रिएटर, प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर, उन सबको डिस्क्राइब करता है सिंगल सिलेबल, दैट इज कॉल्ड ओम। तो जब भी हम ओम बोलते हैं, हम उस ओम के साथ उस परमात्मा का नाम सिर्फ नहीं लेते हैं, उस परमात्मा के पूरे स्वरूप जो ओमकार के अक्षरों में छुपा हुआ है, उसको याद करते हुए उसके नाम लेते हैं। हम सब जपते हैं, बहुत लोग माला भी जपते रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है, आप लाखों जपो, करोड़ों जपो, कुछ नहीं होने वाला, टाइम पास हो सकता है तो आपका हो जाएगा। क्योंकि जप का जो शास्त्रीय अर्थ है, जो हमारे ऋषियों ने मुनियों ने जो अर्थ दिया था, जपस तदर्थ भावनम, अगर किसी चीज के बारे में आप लगातार उस बात को आप रिपीट करते रहते हो और उसके भाव को आप चिंतन करते रहते हो, मन में आता रहता है, वो जप होता है। पर जब आप विदाउट एनी सेंस, विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग, विदाउट एनी मेंटल एक्टिविटी, आप सिर्फ वाणी से एक्सरसाइज करते रहते हो, एक्सरसाइज करते रहते हो, वो सिर्फ आपकी जुबान की एक्सरसाइज है, उससे कुछ नहीं होता है। तो जब भाव के साथ आप करते हो, जब आप ओम बोलते हो और पूरे विचार के साथ, पूरे अर्थ के साथ, तो तो आप ईश्वर के पूरे स्वरूप को अपने अंदर धारण करते हुए ओमकार का उच्चारण करते हो। इसलिए हमारे यहां परंपरा रही, आप कुछ भी करते हो, खाना खाते हो, पढ़ाई करते हो, पूजा करते हो, हवन करते हो, दान करते हो, कुछ भी करते हो, कोई भी काम करते हो, वो काम ओम के साथ शुरू हुआ करता था। मतलब ऐसा नहीं कि आज होता है, पर ये हजारों सालों से होता रहता था, आज भी किसी ना किसी रूप में ये परंपरा जीवित है। कोई भी काम, अब हम इसको सिर्फ रिलीजियस चीजों तक रखा है कि कोई भी रिलीजियस काम करने से पहले ओम बोल के करते हैं। तो इस यही गीता इसके भाव के साथ कहता है, ये ओम वो जो तीन अक्षर वाला ओम है वो हमारे हर काम में झलकता है, झलकना चाहिए। मेरे साथ बोलिए मिलके, कैसे ओमकार का यूज होता है। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। Therefore, all acts of यज्ञ, जितने तरह के भी यज्ञ हम करते हैं, दान अच्छे रीति, तप अष्ट रीति, या अपने आप को शुद्ध करने के, प्यूरिफाई करने के जो भी मेथड्स हैं, as prescribed by the scriptures, are always begun by these expounders, the Veda, with the utterance of Om. तो ओम के उच्चारण के साथ वो सब कुछ हम करते हैं या करना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम से पहले ईश्वर का नाम क्यों लेना की जरूरत है। देखिए, हमारी बड़ा खूबसूरत ट्रेडिशन था, अभी भी किसी ना किसी रूप में है। घर में हम कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं, घर में या बाजार में, समाज में, हम उसको धार्मिकता के साथ करते हैं। बच्चे के, इंसान के जीवन में कोई भी पहली चीज होता है, पैदा होने से लेकर, पैदा होने से पहले भी, जब वो पहली बार मां के गर्भ में पहली बार आता है, जिसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं, कंसेप्शन संस्कार सेरेमनी कहते हैं, कि वो धरती में आने की प्रोसेस शुरू हुआ, हर वो पहली चीज को सेलिब्रेट किया जाता था और उसको हम कहते थे संस्कार। वो गर्भाधान हो, उसके पैदा होने से पहले और भी दो तीन, पहली बार पैदा हुआ तो जातक कर्म संस्कार, उसका नाम रखा पहली बार तो भी नामकरण संस्कार, पहली बार बाल कटवाया तो मुंडन संस्कार, पहली बार सॉलिड खाना खाया तो अन्नप्राशन संस्कार, पहली बार बाहर सूरज में या बाहर रोशनी देखने बाहर गया निष्क्रमण संस्कार, पहली बार स्कूल जाएगा तो उपनयन संस्कार, पहली बार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा तो हाउस होल्ड लाइफ में जाएगा तो गृहस्थ विवाह संस्कार, हर चीज का अपना संस्कार था। वो संस्कार क्या है? सेलिब्रेशन है। पर सेलिब्रेशन दो तरीके से हो सकता है, आप दो चार पेटी मंगा के गैराज में रख के वो भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, दो चार पेटी। और दूसरी तरीका है कि आप अपने घर में हवन करके भगवान के नाम लेकर भी शुरुआत कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। पर हमारी ट्रेडिशन रहा है कि कोई भी काम करो सेलिब्रेट कैसे करते, आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, वेलिशर को बुलाते हो, आप पेटियां मंगा के भी बुला सकते हो, घर में हवन करके पूजा पाठ करके भी बुला सकते हो। पर जब आप रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और वेलविशर को बुलाने के साथ कुछ हवन पूजा पाठ भी करते हो, तो इसका मतलब है कि आप, आपका जो एक दूसरा रिलेटिव है जो इनविजिबल है पर पार्ट ऑफ योर लाइफ है, पार्ट ऑफ योर फैमिली है, पार्ट ऑफ योर सोसाइटी है, उसको आप इग्नोर नहीं कर रहे हो, उसको भी प्रॉपर इंपोर्टेंस देते हो। वो है तुम्हारे हमारे सबके प्रभु है, ईश्वर है, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसका नाम लेकर के हम सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए हमारा सारा सेलिब्रेशन का नाम संस्कार है। कोई भी फेस्टिवल्स हमारे यहां है उसमें भी पूजा करने की, प्रभु के नाम लेने की व्यवस्था है। यही उस ओमकार के साथ जुड़ा। कुछ भी करें, आपके लाइफ में जो एक इनविजिबल कैरेक्टर है जो दिखाई नहीं देता, पर ये पूरे की पूरा आपके लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, कि फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है, वो आपके जीवन में, आपके कण कण में जीवन में समाया हुआ है, आपके घर के हर कण में वो है, उसको भी उसमें शामिल कराना। जैसे ही आप प्रभु को अपने सेलिब्रेशन में शामिल करा देते हैं, वो सेलिब्रेशन फिर सेलिब्रेशन नहीं होता है, वो संस्कार बन जाता है, वो आपको और आपकी सारी एक्टिविटीज को पवित्र बना देता है। जैसे ही आप उसमें प्रभु को जोड़ देते हैं, तो प्रभु को जोड़ने का अगर कुछ भी नहीं है, कम से कम ओम के साथ हम सब काम करते थे, क्योंकि इसे हम हर चीज में उसको जोड़ के रखते थे। पर सिर्फ ओरली नहीं, जैसे कि आजकल माला जपते हैं 108 गिन के, उसमें राम का नाम कम आता है, 2-3-4 ज्यादा नंबर ज्यादा गिना जाता है। भगवान क्या वहां बैठा हुआ है, मेरा नाम कितने बार लिया भाई, ये बताओ बताओ भाई। उसने कंप्यूटर, जी उसने 2,25,000 बार, अच्छा इसको 2,25,000 पॉइंट लगा दो, इसका आगे काउंट होगा। ऐसा थोड़े ही कोई धंधा चलता है। आप एक बार बोलते हो, कभी नहीं बोलते हो, काउंट कैसा भी करते हो, हु केयर्स। अगर मेरा नाम लेकर के कोई काउंट करके बोले, मुझे क्या इससे फर्क पड़ेगा। अगर मेरे आसपास बोलेगा, नेचुरली मैं इरिटेट जरूर होऊंगा, बड़ा अननोइंग होगा। जब प्रभु को खुश करने के लिए नहीं होता है, आपका बच्चा, कभी कभी आप अपने बच्चों का भी जपते रहते हैं, मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा वो, मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा ये जीत के आया, मेरा बच्चे ने ये किया, वो भी जप है। वो क्या है, वो रियल जप है, कि आप उसका बार बार मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा ये करते रहते हो, खाली वाणी से नहीं करते हो, विथ फीलिंग करते हो, ये किया वो किया ये किया ऐसे किया। जब मां बाप अपने बच्चे के बारे में, वो जप है। आप अपने किसी काम के बारे में या किसी फ्रेंड के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में जिससे आप बहुत लगाव रखते हैं, प्यार करते हैं, बार बार उसका नाम लेते हैं, चुपचाप लेते हैं, जोर से लेते हैं, जैसा भी लेते हैं, खाली नाम नहीं लेते हैं, वो नाम जो मुंह में बोलते हैं उसके साथ साथ पूरी की पूरी फीलिंग आपकी आती है। आप अपने दुश्मन को भी नाम लेते रहते हैं। सच बात तो ये है, हम अपने लाइफ में अगर थोड़ा एनालाइज करें, प्यार से, बड़े आराम से, शकून भरे जिंदगी में आप देखेंगे, आप सबसे ज्यादा उसके बारे में सोचते हैं, उसका जप करते हैं, जो जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, जिसको आप हेट करते हैं, जो आपको लगता है कि उसने आपका कुछ नुकसान किया है। और अगर आप कभी काउंट करके देखें, एक महीने का, एक हफ्ते का, आप देखेंगे आपके मन में किसके बारे में आप ज्यादा सोचते हैं, विचारते हैं, बोलते हैं, सबसे ज्यादा शत्रु के बारे में, इसलिए नेगेटिविटी ज्यादा फैलती है। उसके भी जप करते, पर वो जप रियल जप इसी को कहते हैं। पर जब आप प्रभु के नाम जपते हैं, वो अंदर कहीं गले से नीचे कहीं कोई फीलिंग नहीं होता, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बस वो वर्ड्स को रोबोट के तरह हम रटते रहते हैं। इसीलिए वो हमारे अंदर कोई इन्फ्लुएंस नहीं ला पाता है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है हमारे अंदर। आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हो, जरूरी नहीं कि आप अपने बच्चे से सबके तरह, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के तरह ही प्यार करते हो, वह फील रखते हो। बहुत सारे लोग प्यार करते हैं डिटैच्ड मोड में करते हैं, बहुत लोग अटैच्ड मोड में करते हैं, बहुत सारे लेवल के प्यार होते हैं, मतलब प्यार तो एक ही होता है, पर उसके तरह किस तरह के लेवल में आप जाते हैं। पर जब आप बहुत ज्यादा किसी के बारे में जपते रहते हैं, जिसका नाम गुणगान करते रहते हैं, उसका नाम अगर किसी के मुंह से सुना या आप खुद बोलते हैं, तो आप भी बड़े एक्साइटेड रहते हैं। जप में ऐसा नहीं दिखता, क्यों? किसी ने बोल दिया जप करो प्रभु को खुश करने के लिए, हम करते हैं, सोचते हैं कि वो भी कहीं बैठा होगा, उसको जरूरत पड़ती होगी, कोई नाम नहीं ले रहा है तो मैंने ले लिया तो खुश हो जाएगा, चलो तूने मेरा नाम लिया, तेरा काम कर दूंगा। ऐसा नहीं है। जब हमें अपने आप को चेंज करता है, जब भी आप जिससे प्यार करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, इसी को कहते हैं, देखो वो हमेशा उसी का जपता रहता है, अपना काम का जप करता रहता है, मतलब मैंने वो किया, ये किया, क्योंकि आप पूरी तरह एक्साइटेड हो कि मैंने ये किया, तो आपका हर पूरा का पूरा पर्सनालिटी में जो जिसके साथ आप अटैच्ड हो, जिसके बारे में आप बार बार बोलते रहते हो, वो आपकी पर्सनालिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है, वो दिखता है। पर जब हम प्रभु के बारे में ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं दिखता कि सचमुच मेरे अंदर कोई परिवर्तन आ रहा है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कोई मुझे इन्फ्लुएंस हुआ उससे, नहीं होता। इसका मतलब रोबोटिक, रोबोटिक मतलब सिर्फ वर्ड्स को बोला, उसका समझ अंदर नहीं गया। तो कोई भी काम हम करते प्रभु का नाम लेकर, और प्रभु का नाम ओम, आजकल तो उसके साथ भी और बहुत सारी चीजें जोड़ देते हैं, हरि ओम, शिवा ओम, डोम ओम, ओम कितने कितने, मतलब इंसान को खास करके हमारी कम्युनिटी में बड़ी बीमारी है, हम किसी भी चीज को उसकी प्योरिटी के साथ एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते जब तक कुछ मिलावट ना कर दें, या हमारे बाबा गुरु लोग कुछ इसमें उटपटांग ना डाल दें, अपना एक यूनिक वे ना दिखा दें, फिर हम उसमें फंस जाते हैं। ये हरिओम आपको किसी भी शास्त्र में, पुराण से लेकर वेद तक कहीं नहीं मिलने वाला। कुछ बाबा लोगों ने शुरू कर दिया और जिसको देखो हरिओम के ओम है, बस कहीं नहीं मिलेगा ये हरिओम शब्द, कहीं नहीं मिलेगा। ये गीता भी कहता है कोई भी काम करने से पहले ओम तत्सत बोलो, हरिओम तत्सत कहीं नहीं लिखा। ओम तत्सत, ओम उस परमात्मा का नाम जो तत्, दैट, दैट मीन्स दैट इज ए प्रोनाउन। आप प्रोनाउन कब यूज करते हैं? जब आपके पास प्रॉपर नाउन नहीं होता यूज करने के लिए, आप उसको किस नाम से बुलाओगे, कैसे बुलाओगे? जो भी नाम बोलोगे वो अधूरा होगा, इसीलिए वो है। अगर आप हिंदू धर्म के जो पुराने, जितने पुराने लिटरेचर की ओर जाएंगे, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्य ग्रंथ वगैरह, खास करके उपनिषद बहुत पॉपुलर है पढ़े लिखे लोगों में, अगर आप उपनिषद वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे, वहां परमात्मा का कोई नाम नहीं मिलेगा, या कभी कभार आत्मा परमात्मा मिलता है, ब्रह्म शब्द भी बहुत कम यूज मिलता है। क्या यूज मिलता है? वो तत्, एतत्, सह, दैट मीन्स दैट, दिस, ये प्रोनाउन में ज्यादा यूज मिलता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप एक नाउन, प्रॉपर नाउन देंगे, नाम देंगे, वो नाम किसी ऐसी चीज का होगा जिसको आप देख सकते हो, सुन सकते हो, सूंघ सकते हो, बता सकते हो, पर वो तो जो बोल रहा है वो खुद ही नहीं उसको देख सकता, बता सकता, वो आपको क्या बताएगा? इसीलिए वो ओम जो कि वो है, वो जिसका कोई नाम, रूप, रस, गंध कुछ भी नहीं है, दैट इज सत्य, दैट इज ओनली ट्रूथ, वही रियलिटी है। उस परमात्मा का नाम ओम तत्सत लेकर के हम अपने जीवन में सारे अच्छे काम शुरू करें, कर सकते हैं, जोर से नहीं बोल सकते, धीरे से बोल सकते हैं, कोई सोशल स्टिग्मा का प्रॉब्लम हो तो, बहुत होता है, और इसी के साथ हम अपने कर्म को कर सकते हैं। आगे हम डिटेल में और कुछ समझने की कोशिश करेंगे। दोबारा आप सबको ये 2017 विच इज गोइंग, जाने वाला है, जा रहा है, अपनी बुढ़ापा के अंतिम दौर पर पहुंच चुका है, तो आप इसको भी एंजॉय करें और आने वाले कल को भी खूब एंजॉय करें। प्रभु से प्रार्थना करें आपके और आपके आसपास सबके जीवन में खुशी आए, समृद्धि आए, लोग ज्यादा अच्छे बने, ज्यादा संतुष्ट बने, ज्यादा मेहनती बने, और संसार के बारे में भी, दूसरों के बारे में भी सोचने वाले बने, सबके जीवन में खुशी आए। प्रभु से प्रार्थना करते हैं आप सब खुश रहें। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।